Eso dice, ¿no? Y el Bhaktivinoda आज तीन छह बीस बीस का दिन है. अभी अभी हमने देखा अरब सागर से आने वाला तूफान बम्बई में तो आया ही आया, लेकिन हमारे कुल्लू में भी पहुंच गया. तूफान को देखकर मुझे भगवान की लीला को निहारने का एक अवसर मिला. देखो कैसे भगवान अपनी शक्ति के द्वारा तूफान भी लाते हैं, और जहाँ जहाँ उनको जो जो स्थान ठीक करना है, सफाई करवानी है या कुछ नुकसान करना है, तो वो करेंगे, जरूर करेंगे, जैसे जैसे जिसके कर्म होंगे. तो बचपन में हम पढ़ते थे ज्योग्राफी में, भूगोल में, साइक्लोन, तो ये साइक्लोन आया और सोमलपा जी का फोन आया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया, माता जी बड़ी आवाज आ रही है. तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो आया नहीं, और तो मैंने खिड़की से जाकर मैं देखती रही तो शमशी की ओर से सतमुज जी काले काले बादल धीरे 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 हमारे अखाड़ा बाजार की ओर आने लगे. और मैंने पूरा दृश्य देखा कि वो कैसे शमशी से ढालपुर, ढालपुर से अखाड़ा, और अखाड़ा से फिर यहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पहुँच गए. बड़ी तेजी से हवाएं चलने लगी, बड़ी आवाज आने लगी, और बड़े बड़े दरख्त वो ऐसे लहराने लगे मानो छोटी छोटी डालियां हो. थोड़ी देर सीन को देखा, दृश्य को देखा, भगवान ने बुद्धि की भगवान क्या नहीं कर सकता, कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता. तो भगवान ने इतना बड़ा तूफान ला दिया, तो भगवान कितने कैसे अनंत और शक्तिशाली हैं, जिनकी कथा का वर्णन करना हमें मुश्किल है, कठिन है. तो आज मैं प्रातः जो हमने दो कृपा या जाप पर कृपा राम की हुई, पर कृपा करे सबको हुई, एक विषय लिया था. भगवान की कृपा चाहिए, उनकी कृपा से सब काम बनते हैं. तो गो माता भी भगवान की कृपा से इस भूलोक पर आई है, स्वर्ग लोक से आई है. जो समुद्र मंथन किया था उसमें गो माता कल निकली थी, और देवताओं ने उन्हें ऋषि मुनियों को दिया था. तो वो माता के कितने 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 हमारे पर परोपकार है, जिनका वर्णन करना कठिन है. मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ, और वहाँ मैंने बचपन से ही अपने घर के बगल वाले स्थान में छोटा सा बगीचा था, गौशाला भी देखी थी. और वहाँ गौशाला में दो गौएं हमेशा बंदी रहती थी, कभी काली कभी व्हाइट, कैसी गौएं कितनी सुंदर होती थी. और हम सब उनकी सेवा करते थे, और कोई हमें पानी पिलाता, कोई उनको घास खिलाता. इस तरह से हमें गौओं के आसपास रहने का मुझे काफी मौका मिला. तो आज प्रातः हमने देखा था कि एक गौ आई, मेरा श्री महाराज जी खड़े थे, और पौड़ियाँ चढ़ती गई सीधे. उसने आम न देखा, ताव न देखा, और उस छोटी सी गुफा में इतनी ऊंची लंबी गाय कैसे घुसनी हमें भी नहीं पता. पलक झलकते ही सब कुछ हो गया था, और उनकी कृपा से आज मंदिर में अष्ट सिद्धि अनुदिधि हैं. गौ माता जो है ये अष्ट सिद्धि अनुदिधियों को देने वाली है. इसकी सेवा अच्छे ढंग से हो, गौ माता की पूजा हो, तो गौ माता सब कुछ देती. आज मैं फिर से एक और एपिसोड, एक और मिसी के साथ प्रसंग जुड़ा है गोदान का. श्री महाराज जी ने गोदान भी किया, तो मैं सोचने लगी कि श्री महाराज जी गोदान क्यों कर रहे हैं. ये तो फकीर है, उनके योगी है, क्यों नहीं किया. लेकिन उन्होंने हमारे लिए, हमें बताने के लिए, जनता का मार्ग दर्शन करने के लिए ये सब कार्य किए थे. कहते हैं गीता में कहा गया कि जिस पथ पर बड़े लोग चलते हैं, श्रेष्ठ लोग चलते हैं, उसी पथ का अनुकरण साधारण लोग भी करते हैं. तो गोदान जो किया उसमें मैंने देखा महाराज कितनी प्यार से सुबह को खिलाया पिलाया, दो दिनों बांध रखी, फिर पंडित जी को बुलाया, पंडित धनीराम जी आए, उसे शब्द खिलाई, बाबा जो गौ देगा इसको बेचना मत, घर में रख कर इसकी सेवा करना, फिर गौ को कपड़े पहनाए, अच्छा अच्छा खाने को दिया, दान दक्षिणा दी पंडित जी को और गौ दान किया। तो इस तरह से गौ के विषय में और कई प्रसंग है, जैसे मैंने बताया कि गौएं लोग छोड़ जाते हैं सड़क के किनारे, उन गौओं को हम यहाँ बंधौल में जगह लिया, वहाँ गौशाला में पहुँचा देते हैं। कमाल जी वहाँ गौओं की देखभाल करवाने के लिए उन्होंने वहाँ कुछ ग्वालें भी रखी है जो गौओं की अच्छी से सेवा करते है। एक दिन क्या हुआ कि दस बजे का समय था, गौ में गांव से जंगल की ओर जा रही थी, रास्ते में माँ देवी तीर्थ का मंदिर आता है, मंदिर के मुख्य द्वार पर नेशनल हाईवे के आसपास वो चल रही थी, किसी ने आकर के एक गौ को धक्का मारा, धक्का लग गया गौ को और गौ के परी धराम से गिरने से उसकी मौत वही हो गई। और किसी ने उस गौ की परवाह नहीं की, सब भागते गए भागते गए, गौ सड़क पर ही पड़ी गई। कुमार जी को पता चला, वो नीचे गए, उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया, मनाली से आने वाली ट्रैफिक भी और कुल्लू से जाने वाली ट्रैफिक भी रुक गई। सब लोगों ने डीसी के पास शिकायत की, तो डीसी साहब का फोन आया कि आप ट्रैफिक को खोल दीजिए, आधा घंटा ट्रैफिक बंद है, हम म्यूनिसिपल कमेटी के कुछ सदस्यों को भेज रहे हैं, वो गो को उठवा लेंगे, वो उसे ले जाएंगे। फिर ट्रैफिक को खोल दिया गया और गौ को एमसी म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य ले गए। तो कहने का मतलब मेरा ये था इस प्रसंग से कि गौ की वहाँ इतनी महिमा, वहाँ गौ के प्रति लोगों का सेवा भाव कितना कम भी है। गौ मर गई, धक्का लग गया, गाड़ी खड़ी करके गौ को नहीं देखा, तो ये सब पाप है। एक और प्रसंग इसी से संबंधित सुनाती हूँ। प्रातः काल का समय था, सल्ला जी उनके मंदिर में थी, सल्ला वगैरह जी मेरे साथ सड़क पर गई, हम दोनों सड़क पर जा रही थी और एक और नदी बह रही थी और इनको मंदिर था, मंदिर की डिस्पेंसरी के नीचे एक बड़ा हाल था, यहाँ पर संत रहते थे, उस हाल का नाम ही संत निवास था, संत वहाँ सोते थे रहते थे और भंडारे में भोजन पा लेते थे। तो जब हम गुप्त गंगा के पास पहुंची तो हमने देखा एक गौ सड़क के किनारे पड़ी है, किसी का धक्का लगा है, वो वह गिर के मर चुकी थी, तो हमें बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा क्या किया जाए, भंडारे से दो लड़के बुलाए, उन्होंने कहा माता जी हम दोनों से तो उठानी मुश्किल है। तो मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो संत निवास में कुछ साधु संत बैठे हुए थे, मैं वहाँ गई, मैंने कहा संत जी आओ हमारा साधु इस गौ को उठा करके हम थोड़ा किनारे कर दे ताकि और कोई वाहन इसके ऊपर से ना गुजर जाए, फिर कमाल भाई जी आएंगे वो उठा करके उठवा करके ले जाएंगे। लेकिन साधु लोगों ने क्या कहा, माता जी ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं काम करते हैं, हम नहीं गौ को उठाएंगे, और वो उनमें से कोई भी एक साधु नहीं उठा। तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या बात है, ये साधु संत तो बन गए है ना, घर घर से खाना भी मांग के खा लेते हैं और जब सेवा का टाइम आता है तो वो किनारा कर जाते हैं। इस तरह से कई प्रसंग देखने को मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि गौ का निरादर भी गौ उतरता है और गौ को किस तरह से स्लॉटर भी किया जाता है, ये सब कार्य जो है गौ के खिलाफ है, गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यापार की दृष्टि से ये सरकारें ये सब काम करती है। जब मैं कटपट्टी कल्याण गई तो वहाँ मैंने एक गौशाला देखी, गौशाला में 10-15-20 गायें थी, उनकी बड़ी अच्छे से सेवा होती थी, वहाँ से जो दूध आता था वो पेशेंट को दिया जाता था। मैं भी हर प्रतिवर्ष एक पेशेंट बनकर वहाँ जाती थी, वो वहाँ दरबार का दिन व्यतीत करती थी। मैंने देखा ये अच्छे अच्छे गाँव में चोरी में तो ध्यान दे दो। डॉक्टर जी से सलाह की तो उन्होंने कहा कि हाँ आपको गौ मिल जाएगी, मैं गाँव से ला दूंगा। उन्होंने गौ ला दी और हमने बड़े प्यार पूर्वक उस गौ का ध्यान ग्वालों को किया, पंडितों को नहीं, ग्वालों को ही कपड़े पहनाए और गौ भी गौशाला में रख दी। गौ को प्रति वर्ष घास और रोटी जब मैं जाती तो उसे जा करके घास व रोटी भी खिलाती थी। तो हमारी एक सीमा देवी तीर्थ की गौशाला मंदोर में है, कभी कभी हम भक्त लोग वहाँ जाते हैं, आप में से भी कई गए होंगे, वहाँ भी घूमे हैं। और जब हम जुड़े देखते हैं तो हम बम्बा करके हम भागते हैं, वो कुछ मांगती हैं और हम उनको जा करके थोड़ा चपाती या ब्रेड खिलाते हैं तो वो बड़ी खुश होती है। एक और ऐसा ही प्रसंग है जो कुछ वर्ष पहले की बात है कि हमारी धर्मशाला की आखिरी छत पर एक गौ पहाड़ से गिर गई थी और गिरते ही उसकी कमर टूट गई थी, लेकिन वो अच्छी भली थी। तो डॉक्टर को बुलाया गया, हमारे जो डॉक्टर लेके आए, डॉक्टर ने कहा इसकी कमर टूट चुकी है, खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो दो तीन दिन इंजेक्शन लगाते रहे। फिर आखिर उन्होंने कहा कि ये खड़ी नहीं होगी, मरेगी भी नहीं, ये सड़ जाएगी। कोई जीव जो सड़ता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुनकर, मैंने कहा अच्छा। फिर मैं और सल्ला जी प्रतिदिन सुबह जाती, गौ को प्यार करती, घास देती, चपाती खिलाती और गौ सजन देते से हमारी ओर देखती और पुकार करती कि मुझे इस दुख से छुड़ाओ। एक दिन मैंने सल्ला जी से कहा ये सचमुच इसका उद्धार होना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री महाराज से कहा, महाराज जी उसको वो आप अवश्य ले जाइए, कितना दुख सहेगी बेचारी, जब बिल्कुल नहीं उठ पाएगी तो क्या होगा। हम चली गई। दूसरे दिन जब हम चपाती या रोटी लेके आना ही चाहती थी वहाँ, लेकिन वाले ने आके बताया कि माता जी गौ तो आज गोलोक से धा गई है। इस प्रकार जीवन में गौ से संबंधित कई प्रसंग देखने को मिले हैं और अनुभव हुआ कि गौ की सेवा अति आवश्यक सेवा है और गौ का दूध जो है वो हम सबका पालन पोषण करता है, इसलिए गौ को गौ माता कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको ये शिक्षा देना चाहूंगी कि आज तो हमारे घरों में गौएं नहीं है, ना ही हम पाल सकते हैं, ना ही ऐसा वातावरण है, लेकिन फिर भी जहाँ गौएं पलती हैं गौशालाओं में धार्मिक स्थानों में, वहाँ गौ के लिए कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। मैंने अपने बचपन में देखा कि प्रातः काल जब रसोई बनती थी तो माता जी चाहे चावल हो चाहे रोटी हो एक थाली में आलन से निकाल के रख देते थे, फिर कहते थे गौ ग्रास है ये गौ को देने, फिर दूसरी थाली निकालते थे, ये कहते थे ये संतों के लिए, जिनको संत आते हैं उनको देने। तो इस तरह से गौ सेवा के विषय में पिछले समय में लोग बहुत ही सतर्क थे, लेकिन आज गौओं के प्रति उतना हमारा भाव नहीं है। फिर भी हम लोगों को जहाँ भी गौ दिखती है या पाली जाती है रखी जाती है वहाँ जाकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा से हमें सिद्धियाँ और नौनिधियाँ प्राप्त होती है। जय प्रभु। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं गौ माता को बार बार नमस्कार करती हूँ।